नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। कहा, पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद किया। केंद्रीय लघु उद्योग राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और प्रदेश में मकर संक्रांति मनाने के लिए बाजारों में रौनक, लोगों में पतंग उड़ाने को लेकर भारी उत्साह। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण था। इसमें कार्रवाई करने और जवाब देने की पूरी आजादी थी। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद निर्णायक कार्रवाई करने का स्पष्ट फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने 9 में से 7 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और पाकिस्तान की कार्रवाई का संतुलित जवाब सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। आज जयपुर में बजट पूर्व संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडो प्रोत्साहन योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने आश्वस्त किया कि महिलाओं द्वारा दिए गए स्वरोजगार, सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े सुझावों को आगामी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला प्रतिनिधि मौजूद रहीं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास आगामी बजट को सर्वसमावेशी बनाने का है, ताकि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का हित सुरक्षित रहे। आज डीग में बजट पूर्व संवाद के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। श्री रावत ने स्पष्ट किया कि आम जन और विभिन्न वर्गों से बजट के लिए मिले सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
कुछ प्रमुख लोगों से हमने बजट से पूर्व उनके सुझाव भी मांगे कि क्या क्या विकास किस तरह का होना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिए, कुछ लोगों ने लिख के दिए। उन्होंने कहा कि कल तक भी आप कलेक्टर साहब को दे सकते हैं। कलेक्टर साहब हमारे समक्ष वो पूरा विवरण सही प्रस्तुत करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे और आने वाले समय के अंदर डीग जिले का कैसे विकास हो उसका हम खाका तैयार करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी कानून हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पहले के 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के वेतन वाली रोजगार की गारंटी देता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत जी रामजी पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ये योजना बुवाई और कटाई के मौसम के दौरान कृषि मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिनों की बिना काम की अवधि भी प्रदान करती है। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज खैरथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा लाई गई विकसित भारत जी रामजी योजना ग्राम विकास का आधार बनेगी।
हमें जानते हैं कि कांग्रेस ने 10 साल में जो योजना चलाई, उस योजना का हमारी सरकार ने पूरे तरीके से विश्लेषण किया। देश में सब लोग लगातार लिख रहे थे कि एक योजना पुरानी हो चुकी है, इस योजना में धन की बर्बादी होने का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार है कि राजस्थान सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर नरेगा को ग्राम विकास का आधार बनाएगी और 125 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराएगी।
आज चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वीबीजी रामजी योजना में मॉनिटरिंग जियो टैगिंग सिस्टम से की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंद लाजे ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आज जयपुर के उद्योग भवन में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि के बाद ये क्षेत्र देश में रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा माध्यम है। श्रीमती करंद लाजे ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।
प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसी में 10.5 लाख एमएसएमई को 29,000 करोड़ हम सब्सिडी दिया है। 35% SC/ST को हम सब्सिडी देते हैं। 1 करोड़ का योजना है तो 35 लाख हम सब्सिडी देते हैं। जनरल पब्लिक को 25% हम देते हैं। क्लस्टर योजना है, स्फूर्ति योजना है, CMGTC से हम 30 लाख करोड़ तक लोन दिलाए हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भारत के विकास में एमएसएमई हमारे साथी है। 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए एमएसएमई का मदद चाहिए, छोटा उद्यम को मदद चाहिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री कल जयपुर में ही नए श्रम कानूनों की भी समीक्षा करेंगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि शिक्षा जीवन में बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है और विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ अपने चरित्र का विकास भी करना चाहिए। आज डीडवाना में श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने महिलाओं से तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से ही देश का विकास संभव है।
कोई आदमी ऐसा न हो कि उसको काम नहीं मिला, और सभी के हाथ को काम मिला या काम किया तो ही अपनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी सुधर जाएगी, और एक बार आर्थिक परिस्थिति सुधरी तो फिर राष्ट्र का विकास भी होता है।
समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ा रही हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने मेधावी छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। इससे पहले श्री बागड़े ने पंडित बच्छराज व्यास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर डूंगरपुर के युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार आदिवासियों और युवाओं के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल सीखना चाहिए और तकनीक अपनाने के साथ साथ नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि बेणेश्वर धाम में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और निवेश सम्मेलनों के जरिए क्षेत्र में रोजगार के नए मौके बनाए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों से अपना वार्षिक सत्यापन शीघ्र करवाने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन बंद नहीं की गई है, बल्कि सत्यापन नहीं होने के कारण रोकी गई है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही रुकी हुई राशि का भुगतान फिर शुरू हो जाएगा। श्री गहलोत ने बताया कि पेंशनर्स घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना चेहरा दिखाकर सत्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा ई मित्र केंद्रों पर अंगूठे के निशान यानी बायोमेट्रिक्स के जरिए भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के नियमित पेंशन उपलब्ध कराना है। राज्य में आज लोहड़ी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व फसलों के पकने की खुशी और सुख समृद्धि का प्रतीक है। शाम ढलते ही सिंधी और सिख समाज सहित विभिन्न वर्गों द्वारा पारंपरिक अलाव जलाकर पूजा अर्चना की जा रही है। जयपुर के राजा पार्क क्षेत्र में लोग समूहों में इकट्ठे होकर लोहड़ी मना रहे हैं। भरतपुर सहित प्रदेश के अन्य कई हिस्सों में लोगों ने अग्नि की परिक्रमा कर उसमें तिल गुड़ और अनाज का अर्पण किया। इस अवसर पर सामूहिक भोज और लोहड़ी के पारंपरिक गीतों के साथ खुशियां साझा की जा रही हैं। इस बीच मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आज प्रदेश भर के बाजारों में भारी रौनक छाई हुई है। मारवाड़ से लेकर वागड़ तक उत्सव और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 50 साल से चली आ रही अनूठी परंपरा के तहत विभिन्न समाजों ने मिलकर गौ माता के लिए विशेष गौ ग्रास तैयार किया। इसके लिए शुद्ध घी, गुड़ और आटे से रोटियां बनाई गई हैं, जिन्हें कल संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धा भाव से गौवंश को खिलाया जाएगा। पाली के बाजारों में तिल गुड़ के लड्डू और गजक की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ रही। वहीं कोटपूतली बहरोड में युवा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग दिख रहे हैं और प्लास्टिक की जगह कागज की पतंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पे हमने कागज की पतंग और बरेली का प्रसिद्ध मांजा खरीदा है, तो हम इस बार छतों पे खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब पेच काटेंगे और खूब पर्व का आनंद उठाएंगे।
इस बार कागज की पतंग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि पन्नी की पतंग से प्रदूषण फैलता है, इसलिए प्रदूषण नहीं फैलने के कारण पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए हम पतंग ज्यादा का योगदान दे रहे हैं।
और अब मौसम। प्रदेश में आज भी उत्तरी जिलों सहित कई स्थानों पर शीतलहर का असर रहा। वहीं चित्तौड़गढ़ और उदयपुर सहित अन्य जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई। आज सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ करौली सबसे सर्द रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। कहा, पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद किया। केंद्रीय लघु उद्योग राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और प्रदेश में मकर संक्रांति मनाने के लिए बाजारों में रौनक, लोगों में पतंग उड़ाने को लेकर भारी उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।